नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम में। ये है कार्यक्रम संपूर्ण योग, 21 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रन अप तक का योगा चैलेंज। हम सभी संपूर्ण योग को सीख रहे हैं, योग के फिजिकल मेंटल बेनिफिट्स और उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स को सीखते हुए ये कार्यक्रम चल रहा है। आइए आज के कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं फिजिकल योगासनों से। और हमें योगासन कराने के लिए आए हैं हरीश वैद्य जी, सीधे बड़ौदा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो योगासनों के बाद भी हमारे साथ बोध और प्रश्नोत्तर के लिए जुड़े रहेंगे। तो आइए आज का नया आसन सीखते हैं, करते हैं योगासन।
नमस्कार, वंदे मातरम, ओम शांति। आज पेट के बल सोकर के कुछ ऐसे आसन देखेंगे आज की सभा में हम, कि जो स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, पूरे दिन वो थकान महसूस करते हैं, और उनके लिए कम समय में ज्यादा आराम मिले ऐसे कुछ आसन हैं। वो है मकरासन, फिर है बालकासन, फिर है मार्जरासन। मार्जरासन तो केवल रीढ़ की हड्डियों के लिए ही है। तीनों आसन का आज हम अभ्यास कर लेंगे। सबसे पहले आपको मार्जरासन दिखाया जाएगा। आप ऐसी स्थिति में आ जाइए वज्रासन में। अभी देख लिए हमारी ऋतु बहन जी कैसी बताती है। मार्जर माना बिल्ली, बिल्ली जैसा आसन करना है। देखिए, पहले गर्दन बिल्कुल नीचे अंदर की ओर ले जाइए, रीढ़ की हड्डी नीचे झुकाएंगे और बिल्ली जैसा ऊपर की ओर देखेंगे। अभी ये भाग नीचे चला जाएगा, नितंब ऊपर उठेंगे, स्कंध ऊपर उठेंगी, बीच वाला भाग नीचे और ऊपर देखना है। यह मार्जरासन, मार्जर माना बिल्ली कहा जाता है। अच्छा, अभी आपको मकर आसन, मकर माना मगर। सभी आसन पशु पक्षियों से ही आए हैं। अभी उलट लेटना है। आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा आसन बताया आपने। मकरासन, मगर जो है तालाब में रहता है, नदियों में भी रहता है, वो आराम कैसे करता है वो देख लेंगे। आपको उलट लेटना है, दोनों पैरों में 1.5 फुट का फासला हो, पैरों के पंजे की एक दिशा उस तरफ, एक दिशा इस तरफ, ऐसे हो, विपरीत हो दोनों पंजों की दिशा, दोनों हाथ ऐसे हो। फिर आपने लेफ्ट में या राइट में गर्दन डाल देनी है आपकी। ये हो गया मकरासन। मकरासन में आप कम से कम 15-20 मिनट आप विश्राम करोगे। शरीर का पूरा हिस्सा जमीन को चिपकता है और धरती माँ ऐसी है, हमारे सारे स्ट्रेस को हर लेते हैं। आपको प्रयोग करके देखना हो तो देखिए, जो लोग सुबह चलने जाते हैं, वॉक पर जाते हैं शाम पर, वो लोग क्या है, पैरों में बूट घुसेड़ते हैं फिर चलने जाते हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जी या स्ट्रेस है, वो जो नीचे निकलता है, तो नीचे तो बूट होते हैं, तो वो फिर से वापिस ऊपर जाता है। और ज्यादा जो एक्सरसाइज करता है बूट पहन के, वो 2 ही महीने में चिड़चिड़ा हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है उसको, और उसको पसीना बहुत आता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं उसके। ये बूट पहनकर जो एक्सरसाइज करते हैं उसका नतीजा है। एक सिंपल प्रयोग करके देखना आप बिना चप्पल के हरे घास पर चलिए, धरती के साथ जुड़िए। आप कम से कम दिन में 2 घंटा आपके पैरों को जमीन से चिपकाए रखिए, नहीं तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। नेगेटिव एनर्जी तो निकलना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आप जमीन से जुड़े ही नहीं हैं। तो स्ट्रेस से मुक्त हो जाने के लिए आपको जमीन से जुड़ना कंपलसरी है, कम से कम 2 घंटा। आप 10 से 12 घंटा बूट पहन के रखेंगे तो एक दिन आप जबरदस्त पसीने के मालिक हो जाएंगे, बहुत पसीना होगा और घर में गुस्से वाला ही वातावरण होगा आपका। कई लोग तो क्या होता है, ऑफिस से घर पर आते हैं, बूट निकाल लेते हैं, फिर चप्पल पहन लेते हैं, तो धरती से उनका कोई नाता ही नहीं बनता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक तो ये मकरासन है, आप याद रखना, मकरासन में आराम ज्यादा मिलता है। दूसरा है बालकासन। आप हरे घास पर नहीं चल सकते हो तो आपकी छत पर या आपके पार्किंग में बिना चप्पल के चलना, मिट्टी पर चलोगे तो भी सोने में सुहागा है। बालकासन में एक बिल्कुल लेफ्ट वाला पैर लंबा कर दो, फिर लेफ्ट वाली भुजा पीछे की ओर लंबी कर दो, ये भुजा पीछे ले जाओ, पीछे, हाँ, एक हाथ ऐसे, फिर राइट पैर मोड़ के नाभि के पास तक, नाभि के सिद्धलिट में लाना है। ये हुआ बालकासन। जैसे बच्चे सो जाते हैं ना, कम समय में ज्यादा से ज्यादा फ्रेश हो जाते हैं। अगर आपको 2 या 3 घंटे की नींद 20 मिनट में चाहिए तो यह बालकासन, ये करके देखिए, हमारे पास तो सालों का अनुभव है। ये है बालकासन, वो दोनों ओर से कर सकते हैं आप। अभी दूसरी ओर से करके बताओ, राइट वाला पैर लंबा, एक हाथ उस तरफ, लेफ्ट वाला घुटना नाभि की बिल्कुल सीधी लाइन में, और इस तरह से आंखें बंद करके आप बिल्कुल सो जाएंगे। बिल्कुल हल्का सा कोई संगीत बजता हो, म्यूजिक बजता हो, माइल्ड म्यूजिक, जो जिसका लय अल्फा लेवल हो, और मधुर जैसे तानपुरा बजता हो या कोई भी योग का संगीत बजे, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। 20 मिनट में तो आप देखेंगे कि आप पूरी थकान आपकी उतर गई, सारा स्ट्रेस लेवल नॉर्मल हो गया। अच्छा रितुबेन जी, आप मूल स्थान में आज के बैठ जाइए। देखिए, स्ट्रेस बढ़ने का एक कारण यह है कि आप योग युक्त नहीं होते हो। क्या आपने कभी राजयोग किया है? राजयोग नहीं किया है तो आप राजयोग सीखिए। राजयोग एक ऐसी कला है जो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराती है, क्योंकि राजयोग में सबसे पहले शरीर को भूलना होता है। आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, ये रियलाइज करना होता है, और फिर आत्मा बन के परमात्मा के साथ जुड़ना होता है। इसलिए आप कभी राजयोग को मिस मत करो। हीड़ा पीड़ा सभी मिट जाएगी, आपके त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे, ये मेरा दावा है, ये मेरा अनुभव है। इसलिए हमने अभी ये 3 आसन देखे। एक प्रार्थना मेरी यह भी है कि आप जमीन से जुड़े हुए रहना, जितना जमीन से जुड़ेंगे अच्छा रहेगा, आपको बहुत फायदे रहेंगे। मेरी तो यही सदा से शुभकामना रहती है, पूरे ब्रह्मा कुमारी इसकी यही शुभकामनाएं रहती है। अस्तु, इस
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी हरीश वैद्य जी जुड़े थे और साथ साथ ऋतु जी भी जुड़े थे, और उन्होंने बहुत सुंदर आज डेमोन्स्ट्रेशंस किए। और डेमोन्स्ट्रेशंस में आज हमने मार्जरासन सीखा, यानी द कैट पोज सीखा, और साथ में हमने मकरासन जिसे क्रोकोडाइल पोज कहते हैं, और फिर आखिर में बालकासन यानी द चाइल्ड पोज भी सीखा। अब ये देखने में बहुत ही आसान से आसन लग रहे थे, मैं समझता हूँ आप सभी करके देख सकते हैं। ऐसा वेट नहीं करें कि भाई हम कल सुबह करेंगे, या जैसे प्रोग्राम चल रहा होता है प्रोग्राम में आप कैमरा चालू रखिए और फिर साथ साथ इन आसनों को करते जाइए। पहले आप 4-5 मिनट के लिए भी करते हैं तो आप सीख जाते हैं, क्योंकि करते करते लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में आप कर रहे हैं तो आपको भी मजा आएगा। तो चलिए, ये थे आज के योगासन, और आज योगासनों में 3 आसनों को सीखा है, तो इसको भी प्रैक्टिस कीजिए। और अब बोध की बारी आती है, यानी हरीश वैद्य जी से हम आज योगासन के विषय पर और भी बोध लेंगे, उनसे प्रश्नोत्तर भी करेंगे। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो क्योंकि प्रोग्राम लाइव है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अभी के भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं। जैसे आपके कमेंट्स भी हैं तो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप हाय हेलो कर रहे हैं, वो सब कुछ भी स्क्रीन पर दिख रहा है। बट साथ साथ अगर आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहें तो भी आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उनको हम प्रश्नों के रूप में स्क्रीन पर दिखाएंगे, और हमारे एक्सपर्ट हरीश वैद्य जी आज प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। बट इससे पहले कि हम उनसे प्रश्नोत्तर करें, आइए करते हैं उनसे बोध। और आज का विषय है कि खड़े रहकर करने वाले आसनों के बारे में, उसकी अहमियत क्या है, खड़े होकर करने वाले आसनों को किसे करना चाहिए, कितना टाइम करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। उन सब चीजों के ऊपर आज योगासन के विषय पर हम बोध लेते हैं। और मुनि पतंजलि ने योगासन के लिए जो अष्टांग योग बताए हैं उसमें से योग का एक अंग आसन भी है, और आसन पर हम 4 दिनों की ये चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने रिलैक्सेशन यानी अपने आप को शिथिलीकरण के बारे में, अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के बारे में, और फिर वार्मिंग अप यानी एक्सरसाइज करने के लिए अपने शरीर के जो मसल्स हैं उसे वार्म अप करने के बारे में भी कल हमने सीखा, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं योग करने से और करने के बाद, ये चीजें सीखी। तो चलिए आज के विषय पर हम सीधे चलते हैं आज के बोध में, और हरीश वैद्य जी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। प्रणाम हरीश वैद्य जी, स्वागत है आपका।
प्रणाम। मैं स्क्रीन पर नहीं दिख रहा हूँ भाई साहब।
नहीं, आप नजर तो आ रहे हैं, हमें तो नजर आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ ऑडियंस भी देख पा रहे हैं। जी
तो हाँ
जी, आप नजर आ रहे हैं, बेझिझक बात कीजिए। पहले तो आज के विषय के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि पहले 10 मिनट आप आज के विषय के बारे में बताएं। बहुत सारे प्रश्न हैं, कल भी हमारे दोस्तों ने कुछ सवाल पूछे थे, वो प्रश्न मैं बाद में पूछूंगा आपसे। आज भी जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में भी टाइप करेंगे। आज खड़े होकर करने वाले आसनों के बारे में आप थोड़ी जानकारी हमारे सभी दोस्तों को दें।
हाँ जी, हाँ जी, सबको ओम शांति, प्रणाम, वंदे मातरम। आसनों की श्रृंखला में बहुत सारे आसन हैं, खड़े खड़े किए जाने वाले, उलट लेट के किए जाने वाले, सुलट लेट के किए जाने वाले, बैठ के किए जाने वाले, ऐसे बहुत प्रकार के आसन हैं। इसमें अगर पूरी बॉडी को हमने व्यायाम देना है, एक विशिष्ट प्रकार की मरोड़ देनी है, पैरों में जान भरनी है और रीढ़ की हड्डियों में मजबूती लानी है, ब्रेन पावरफुल बनाना है, सर्वाइकल और लोअर जोन में पावर बख्शना है, और बिल्कुल जवानी बरकरार रखनी है, तेज तर्रार रहना है, आंखें भी पावरफुल हो, तो इन सभी हालतों में हमको खड़े खड़े किए जाने वाले जो आसन है वो निश्चित रूप से करने चाहिए। उसके पहले मैं मानता हूं कि आपने थोड़ा सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लेना चाहिए, थोड़ा जॉगिंग का अभ्यास कर लेना चाहिए, बाद में हम जो है वो त्रिकोणासन है, फिर कोणासन है, पटी चक्रासन है, अर्धचक्रासन है, वीरभद्रासन है, ताड़ासन है, वृक्षासन है, गरुड़ासन है, उत्कटासन है, ऐसे विभिन्न प्रकार के बहुत सारे आसन हैं। फिर एक वायु यानासन भी है, वो भी कर सकते हैं खड़े खड़े। तो ये जितने भी आसन हैं, अगर हमने समझो शेड्यूल बना दिया हमारा कि रोज एक ही प्रकार के घिसे पिटे आसन न करें, सप्ताह में 7 दिन अलग अलग तय कर ले, जैसे प्राणायाम का भी शेड्यूल आप बना ले, कभी खड़े खड़े किए जाने वाला आसन करें। देखिए, एक प्रकार से ये जो 21 दिन का प्रोग्राम है बहुत अच्छी पहल की है ये मधुबन निवासियों ने, ब्रह्मा कुमारियों ने, क्योंकि इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है, कॉमन प्रोटोकॉल, आपने अगर उस कॉमन प्रोटोकॉल का अभ्यास किया होगा ना, तो उसमें ए टू जेड सारी चीजें थोड़ी थोड़ी भी सम्मिलित कर ली है। अगर और उसमें भी ऐसा बताया गया है कि हर व्यक्ति अगर प्रोटोकॉल को फॉलो करता है तो उसको सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे जो आसनों से मिलने वाले हैं, जो ध्यान और प्राणायाम से मिलने वाले हैं। आप यदि इसमें अगर खड़े खड़े जो आसन करने हैं तो उसमें कोणासन में तो खाली यूं करेंगे तो भी कोणासन हो जाएगा, लेकिन दोनों हाथ लंबे करके, दोनों पैरों में 2 फुट का फासला लेकर के आप जैसे यूं लेफ्ट साइड में या राइट साइड में झुक के अपने पैरों को स्पर्श करेंगे तो वो भी त्रिकोणासन हो गया। अगर लेफ्ट साइड में आपकी बहुत चर्बी है, राइट साइड में बहुत चर्बी है तो वो आसन करें। अगर आपको पेट बहुत बड़ा ज्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है तो आप नीचे झुक के क्रिया कर सकते हैं। प्रोस्टेट के लिए भी उसमें जो आसन है वो भी खड़े खड़े आसन कर सकते हैं, कुर्सी आसन जिसको कहते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डियों में दर्द है तो आप अर्ध चक्रासन कर सकते हैं पीछे झुकते हुए। तो इस प्रकार से अगर अलग अलग प्रकार से दोनों पैरों में जान भरनी है और हाथों में भी जान भरनी है, तो आप गरुड़ासन भी कर सकते हैं, पैरों में भी इस प्रकार की आंटी लगाएंगे आप। वृक्षासन में तो देखो एकाग्रता बढ़ती है, वृक्षासन अगर कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका तो ही आपसे वृक्षासन होगा। ताड़ासन भी आपका जो रीढ़ की हड्डियों को सबसे ज्यादा व्यायाम देने वाला है, ताड़ासन भी आप करेंगे तो भी देखो आप कम से कम ताड़ासन में 12 से 15 सेकंड भी टिकेंगे ना, पूरी बैक साइड में बॉडी में इतना खींचाव आएगा, पॉजिटिव खींचाव आएगा, रीढ़ की हड्डियों इतनी तन जाएगी, पेट भी उससे कम होना शुरू हो जाएगा, आपके फ्रोजन शोल्डर में भी अगर प्रॉब्लम है, माना फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। तो मेरा जो कहना है कि आप खड़े खड़े जो किए जाने वाले आसन है ना, निश्चित रूप से फॉलो करें, उसमें रीढ़ की हड्डी के साथ साथ गर्दन के भी व्यायाम है, उसमें समझो दोनों हाथ आप यूं करके उलट करके, उलट करना है, ऊपर चिपका दे तो यहाँ तो बहुत अच्छा व्यायाम मिलेगा, ऐसे मत रखना ऊपर, ऐसे रखना। तो हाथों में खास करके स्कंद मेखला में भी बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। देखो ये छोटी छोटी आप क्रियाएं करोगे ना, तो उन छोटी छोटी क्रियाओं में आप पाएंगे बड़े बड़े परिणाम। सर्वाइकल में तो देखो डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये बिना ऑपरेशन के नहीं मिटेगा, लेकिन आप सूक्ष्म क्रियाओं ही करोगे। और मैंने अभी जो पोस्ट बताया जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में सबसे पहली चीज आती है, वो भी आप करोगे तो भी निश्चित रूप से आपको फायदे होंगे। कटी चक्रासन में देखो लोअर बैक पे जो हड्डियां है, L1, L2, L3, L4, L5 और S1 तक की जो हड्डियां है, उसमें और मध्य करोड़ में आपको बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, क्योंकि वो सर्वाइकल से उसमें मुड़ाव शुरू हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें दिखने में भी आसान है, कभी कभार ताड़ासन में और वृक्षासन में तकलीफ हो जाती है लोगों को, आप निश्चित रूप से वो आसन करेंगे तो मैं मानता हूं फायदों का अंबार लग जाएगा, आपको ढेर सारे फायदे होना शुरू हो जाएगा। और ये आप किसी के कहने से मत कीजिए, पहले आप अनुभव कीजिए। और ये मधुबन निवासी आपके घर तक आकर के अगर इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व होकर के अगर आप करोगे तो देखो कितने बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अभी क्या है, आप कुछ भी बोलोगे डॉक्टर को कि सर दर्द होता है, कमर दर्द होता है, जैसे आप एक एक चीज बोलते जाओगे फट फट वो दवा लिखते जाएंगे, जितने आप प्रॉब्लम बताओगे उतनी दवा मिल जाएगी। लेकिन अकेला अगर आपने सूर्य नमस्कार किया, अगर आपको लोअर बैक में तकलीफ नहीं है, तो सूर्य नमस्कार में भी बहुत सारे प्रकार के व्यायाम आ गए, बहुत सारे प्रकार के आसन भी आ गए। तो मैं मानता हूं कि आपने इन सभी प्रकार के आसनों का अभ्यास करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें एड़ी से लगाकर चोटी तक, क्योंकि आप ताड़ासन करोगे तो एड़ी का भी व्यायाम हो जाएगा, वृक्षासन में पैरों के तलों का अभ्यास हो जाएगा, फिर त्रिकोणासन में घुटनों का अभ्यास हो जाएगा, फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का भी अभ्यास हो जाएगा, चक्रासन में रीढ़ की हड्डियों का व्यायाम हो जाएगा, नीचे हस्तपादासन में पेट का भी व्यायाम हो जाएगा, गर्दन का भी व्यायाम हो जाएगा, त्रिकोणासन में स्कंद मेखलाओं का व्यायाम हो जाएगा, और कोणासन में भी स्कंद मेखला और एक तरफ का जो चर्बी का हिस्सा है उसमें आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आप करके तो देखिए, इतने सारे सुझाव आप समझो यूट्यूब से आ रहे हैं, आपको ढेर सारे लोग आपकी सेवा में खड़े हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज का ये प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, आप बिल्कुल प्यार से इस पर भरोसा कर सकते हैं। और आपको अनुभव ही करना है तो जुड़िए हमारी टीम से और पूछ परछ कीजिए, पूछा कीजिए, आपको बहुत सारे परिणाम मिलेंगे और निश्चित रूप से मिलेंगे। हाँ, इसमें अतिरिक्त मत करना, समझो आप पीछे झुक के चक्रासन कर रहे हो, अर्ध चक्रासन, तो उसमें आपसे हो सके उतना ही कीजिए, किसी का सपोर्ट मत लीजिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नीचे झुकने पर भी आपने जब नीचे झुकते हो ना, तो घुटना नहीं मोड़ना है आपको, घुटना सीधा ही रखना है और तब आपके हाथों के इन पंजों को पैरों के पंजों से छूना है, तब ही आपकी रीढ़ की हड्डियों में और पार्श्व जानों में, मानो घुटनों के पीछे के हिस्से में एक खिंचाव आ जाएगा
और जो बुढ़ापे में पैर ट्विस्ट हो जाते हैं घुटनों से, वो होना ही बंद हो जाएगा। तो ये तो आप अनुभव करोगे तो ही होगा। और ये हमारे पूर्वज 2500 साल पहले इतना सारा मटेरियल लेके गए हैं, और अगर हमने उसका उपयोग नहीं किया, आप देखो विदेशों में तो ढेर सारी पाठशालाएं हैं योग के लिए, गली गली में है, और योग की इंडस्ट्री कही जाती है, और अरबों रुपयों की योग की इंडस्ट्री है। हम तो आपको फ्री दे रहे हैं, हम तो आपके घर पर आके आपको बता रहे हैं, बड़ी आसानी से बता रहे हैं, सुस्पष्ट और आसान भाषा में बता रहे हैं। तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बात है ना?
बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए हरीश जी। जो आप अभी बात बता रहे थे, मैं समझता हूँ बहुत सारे हमारे दोस्त उससे सहमत हैं। हमारे एक साथी ने कमेंट भी लिखा है, ने कहा कि आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं, कुछ डाउट्स पूछने का ही दिल नहीं कर रहा है, सब कुछ स्पष्ट होता जा रहा है। चलिए अब प्रश्नोत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं हरीश भाई, कुछ साथियों ने सवाल पूछे हैं। तो एक साथी ने प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न की ओर मैं पहले बढ़ता हूँ। ये प्रियंका नाम है इनका, प्रियंका शर्मा, प्रियंका कांत शर्मा नाम है इनका। प्रियंका कांत जी प्रश्न पूछते हैं, ओम शांति। आपने कहा कि बदल बदल के आसन कर सकते हैं, तो एक आसन का अभ्यास कितने बार कर सकते हैं और कितने बार में बदल देना चाहिए, ऐसा ये पूछते हैं।
देखिए अगर आपको कोई डिसीज है प्रियंका मैडम, तो आपने वो रोजाना प्रैक्टिस में लाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, तो आप 21 जून का जो अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल है वो बेधड़क होके फॉलो कीजिए, उसमें सब कुछ आ जाता है। या वो भी आपको फॉलो नहीं करना है, अगर आपकी उम्र आपको साथ दे रही है, तो मैं मानता हूं कि आप सूर्य नमस्कार कीजिए। अदल बदल के इसलिए मैंने कहा कि आपको कोई तकलीफ ही नहीं है, तो आपने उन चीजों का अभ्यास करना चाहिए, अदल बदल के करना चाहिए, ताकि सभी आसनों से और सभी विधियों से आप जुड़े रहें, ताकि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ही ना रहे।
हाँ जी, ये एक और चीज इन्होंने ऐड किया था कि कितने दिनों बाद एक आसन को बदल सकते हैं, अगर एक आसन कर रहे हैं समझे, तो कितने दिनों बाद उस आसन को बदला जाए।
नहीं नहीं ऐसा कोई स्पिरिचुअल कानून नहीं है, ये आप मजे के लिए करना है, अपने आप को आनंदित रखने के लिए करना है, ये कोई रटी रटाई चीज नहीं है। आप 2-3 दिन का भी गैप रख सकते हैं, या तो आप रोज भी कर सकते हो। अगर आपका B12 और विटामिन डी बिल्कुल पावरफुल है, फुल है, तो आप रोज का सभी आसन कर सकते हैं, 2-2, 3-3 बार करें, रोज अभ्यास करें, या तो हफ्ते में 2 या 3 बार करें। हर चीज से आपको अनुभव पाना है ना, इसलिए ये आप तय करिए। हाँ जी
जी। एक और साथी हैं हमारे पास, शकुन गौतम नाम है इनका, फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। वो कहते हैं ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है, तो भस्त्रिका और त्रिकोण आसन कर सकते हैं क्या, ये प्रश्न पूछते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए ब्लड प्रेशर में तो आप सबसे पहले है ना शवासन कीजिए और बालकासन कीजिए, बहुत बेहतरीन परिणाम मिल गए। और भस्त्रिका जो है मृदु वाली कीजिए, मृदु भस्त्रिका, तीव्र भस्त्रिका मत करें। जैसे 3 स्टेज में होती है, कुछ लोग सिखाते हैं भस्त्रिका के 40-40 और 20 के रेशियो में सिखाते हैं, मैं मानता हूं उसमें जो तीसरा रिदम है ना वो मिस करें। ये आप अनुभव करके देखें, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं, वो तो हमसे बहुत बड़े हैं जिन्होंने ये सिखाया है। आप है ना भस्त्रिका सीधा बैठते हुए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल 90 एंगल रखें, गहरी गहरी सांस भरे, आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान करके, खुद को आत्मा समझ करके अगर ये गहरी गहरी सांसें आप लेंगे ना, ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाएगा आपका। याद रखे सॉल्ट थोड़ा कम कर दें, क्योंकि जितना सॉल्ट ज्यादा खाओगे ना आप, खून गाढ़ा होता जाएगा, फिर उसको बहने के लिए ये नस नलिकाएं छोटी पड़ जाएगी, इसलिए आपने सॉल्ट कम कर देना है। हर आधे घंटे पर 2 या 4 घूंट पानी पी लीजिएगा, पानी कम मत होने देना, क्योंकि मैंने कल बताया था कि पानी की निकासी बॉडी में कितनी होती है, आप हिसाब लगाओ कि दिन भर में आप कितना पानी पीते हो, मुश्किल से 3-3.5 लीटर या 4 लीटर लोग पानी पीते हैं, और बच्चों से लगाकर बूढ़े तक, हालांकि जो मृत्युशैया पर है वे लोग भी, उनका भी सांस प्रश्वास से 750 ग्राम जितना पानी भाप बन के उड़ जाता है। कपड़े उनके 1.5 से 2 लीटर पानी सोख लेते हैं, यूरिन उनकी जो होती है वो भी 1.5 से 2 लीटर होती है, तो अंदाजन 3 से 3.5 लीटर जितना पानी तो यही उड़ जाता है। और फिर अगर आप पानी कम पी रहे हो तो आपका अक्कून गाढ़ा बनना तय है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए।
जी, ये तो ब्लड प्रेशर के बारे में हमारे दोस्तों ने जो प्रश्न पूछा उसके उत्तर हुए। ये एक प्रश्न मेरे मन में ये आ रहा था कि जब हम खड़े होकर करने वाले आसन करते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको खड़े रहने में दिक्कत होती है, या पैरों का कभी ऑपरेशन हुआ है, कभी एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण पैरों में दर्द रहता है, या कुछ भी है, तो ऐसे में उन साथियों को क्या करना चाहिए, या खड़े होकर करने वाले आसन के लिए अगर दिक्कत करते हैं तो तब क्या किया जाए?
सर, योग दर्शन में ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, और जितने पशु है उतने आसन है। आप बैठ करके भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं, उल्टा सोकर भी आसन कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठे बैठे कर सकते हैं, अगर बीमार है तो पलंग पर लेटे लेटे कर सकते हैं। जैसे बाबा ने हमको बताया कि लेटे लेटे भी मुरली सुनो अगर आप बीमार है, तो ये तो सारा कुछ आसानी से कर सकते हैं। अगर पैर में दर्द है तो ब्रह्मा बाबा जी इस पोज में मुरली सुनाते थे अर्ध पद्मासन में, तो अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं। माने ये तो बहुत आसान चीजें हैं, आप जिस आसन में बैठोगे वो भी एक आसन हो जाएगा, आप जैसे भी बैठोगे वो एक आसन हो जाएगा, इसलिए ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। आप थोड़ा जुड़े रहे हमसे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जी सर,
जी बहुत बहुत शुक्रिया हरीश भाई, आपने ये बात बताई कि आसनों को बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है, आसानी से करना है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना है, आपके बॉडी के लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। कुछ और प्रश्न है हमारे साथियों के कि ये पूछते हैं, शुभ्रांशु शेखर नाम है इनका, और ये प्रश्न पूछते हैं क्या ये यूथ के लिए उपयोगी है, ऐसा ये प्रश्न पूछते हैं, क्या युवाओं के लिए योगासन उपयोगी है, क्योंकि अक्सर योगासन में देखा जाता है कि जो युवा साथी हैं हमारे उनकी बॉडी तो एकदम पहले से ही फिट रहती है क्योंकि वो यंग है, शरीर थोड़ा जवान है,
नहीं, नहीं, नहीं,
तो उसमें उनको कुछ फायदे होते हैं।
सिर्फ शुभ्रांशु भाई को ये बताइए, माना उनके जरिए मैं सारे यूथ को बता रहा हूँ कि केवल घुटने बिल्कुल मोड़े बिना नीचे झुक के अपने पैरों को स्पर्श करे तो मालूम पड़ जाएगा कि रीढ़ की हड्डियों में कितनी स्टिफनेस है। मैं शुभ्रांशु भाई को ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, बहुत सारे युवा मित्रों को बता रहा हूँ। और उन्होंने जो पूछा है कि योग के आसन युवाओं के लिए ठीक है क्या, ये तो शरीरधारियों के लिए ही है, जिस आत्मा ने देह धारण कर लिया उन सबके लिए उपयोगी है और अत्यंत उपयोगी है, और ये बिल्कुल बेसिक है। आप अगर पलाठी लगा के सुखासन में बैठ भी नहीं पाते हो, पलाठी लगा के बैठना वो सुखासन है, थोड़ा तान के बैठना स्वस्तिकासन है, पैर पर पैर चढ़ा के बैठना पद्मासन है, ये सभी आसन है। आप उल्टे सो गए तो वो मकरासन हो गया, आप सीधे लेट गए तो शवासन हो गया, सब आसन है, लेकिन कब कौन सा आसन यूज करें वो इस प्रोग्राम के जरिए आपको मालूम पड़ेगा। हमारे मधुबन निवासी इतनी मेहनत करते हैं, 21 दिन के लिए देखो दिन भर में कितनी मेहनत करके इन्फॉर्मेशन जुटानी पड़ती है, आपको तो तैयार मिलता है, तो आपने इस चीजों का निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए। जी सर,
एक और प्रश्न आया है कि सूर्य नमस्कार करने के समय सांसों के आदान प्रदान पर भी ध्यान देना जरूरी है क्या, ऐसा ये पूछते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए पहले तो आप करना शुरू कर दीजिए, शरीर अपने आप उसके साथ सेट हो जाएगा, क्योंकि नेचर को अगर आपने फॉलो किया ना तो नेचर अपने आप सेट कर लेती है। लेकिन नीचे झुकने वाले जो पोस्चर है, हस्तपाद आसन है या एक पाद प्रसरण आसन है या नीचे झुकने वाले जो पर्वतासन वगैरह है, उसमें सांसों को बाहर निकालना होता है, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि पेट दबता है तो उसमें सांसों को बाहर निकालिए। जब आप पीछे करने जाने वाले जो आसन है उसमें आप हवा भरे पेट में, ये तो आसान है, अपने आप हो जाएगा, आप करके देखो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके करोगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये तो शरीर अपने आप एडजस्ट हो जाता है। जी सर,
जी बहुत बहुत शुक्रिया हरीश भाई, मैं समझता हूँ हमारे दोस्त और भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। दोस्तों आप प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और आपके कमेंट से हम आपके प्रश्नों को लेकर हरीश जी से प्रश्न लेंगे, प्रश्नों का उत्तर हरीश भाई हमें देने के लिए कल भी मौजूद रहेंगे और परसों भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जय लक्ष्मी जी हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं हरीश जी, वो पूछते हैं कि मुझे पिछले महीने 10 तारीख को कोविड हो गया था, 10 मई को, और वो बाद में ठीक हो गया, और 31 मई को मेरे को 31 मई के बाद से उनको बहुत ही सीवियर वर्टिगो है और एक कान में उनको सुनाई नहीं देता। तो वो कहते हैं कि क्या कोई ऐसे आसन है जिससे कानों की जो सुनने की क्षमता बेहतर हो सके, उस पर कुछ आसन हो ऐसा बताएं।
जी बिल्कुल, उनको वर्टिगो भी में फायदे होगा। उसमें आसन के बदले आपको जो स्वर चिकित्सा है वो काम लगेगी। अलग अलग प्रकार के प्राणायाम है, जैसे जय लक्ष्मी मैडम आप इस प्रकार से बैठ जाइए, हथेलियां बिल्कुल सीधी रखें और हाथ का ये जो भाग है ये, इससे कान का ये जो ढक्कन है छोटी सी, उसको बिल्कुल सीधे से बंद करना। आप गहरी सांस लेना और आप सभी कीजिए, आप अनुभव करें कान में कितने स्पंदन आ रहे हैं, कितनी जोर सी आवाज आ रही है, केवल ये ईश्वर में। अभी आप दूसरा, एक तो हनुमान मुद्रा करें, अपने नाक को इस प्रकार से पकड़ के बंद कर दीजिए, अंदर सांसों को रोके और हनुमान मुद्रा करें, कानों से हवा निकलने का प्रयत्न कीजिए। कीजिए, अभी कानों से हवा निकलेगी और कान के दर्द में इमीडिएट आपको फर्क होना शुरू हो जाएगा। फिर आप गुंजनात्मक ओंकार करेंगे, राइट वाली हथेली यहां रख दे अपने शीर्ष पर, गहरी सांस भरे और ओम ओम
ओम
आपका ये पूरा इलाका वाइब्रेट होगा, कानों में स्पंदन बढ़ेंगे। और जब आप इकारांतक प्राणायाम करते हो उसमें नाड़ी बदलना सीखे, ये जैसे मैंने ई बोलना सिखाया ना, तो एक बार जबड़ा इस तरफ ले आइए, एक बार जबड़ा इस तरफ ले आइए, जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, इमीडिएट नाड़ी बदलेगी आपको अभी और यही अनुभव होगा। गहरी सांस भरे आप करें, देखो इस बार इस तरफ का आवाज बंद हो जाएगा, फिर इस तरफ की आवाज बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप करके देखे, ये कानों के लिए ही है, इसमें अल्फा स्वर बहुत होते हैं, अल्फा वेव्स पैदा होते हैं। घर के झगड़े अगर होते हैं आपके, तो बहुत घर में शांति आ जाएगी, आपके पास वातावरण इतना अच्छा हो जाएगा। तो जिन लोगों के घर में छोटे छोटी बातों में झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं ना, तो घर के सभी लोग ये इकारांतक प्राणायाम करना शुरू कर दें। और एक छोटी सी आपको विधि सिखा देता हूं, आप थोड़ा सा तेल लेके, कोपरे का तेल लेके, उसमें 4-5 पत्ते नीम के डाले और मेथी के दाने थोड़े आधी चम्मच जितना डाले, उसको गर्म करें, फिर उसको ठंडा हो जाने के बाद कान में डालना रात को सोते वक्त, आपको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। जी सर
जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश भाई। एक और प्रश्न है, भावना भटनागर हमारे साथ जुड़े हैं, फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। भावना जी का प्रश्न है, घुटनों के लिए कोई अच्छा योगासन की विधि बताएं, ऐसा कहते हैं
जी। घुटनों के लिए तो सूक्ष्म व्यायाम बहुत सारे हैं, और जितने भी खड़े खड़े अभी मैं जिन आसनों का उल्लेख किया मैंने, वो सारे घुटनों के लिए सबसे ज्यादा पहले फायदा करेंगे। और आप सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, बैठे बैठे पैर ऐसे ऐसे हिलाइए, पैर आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए, गोल गोल घुमाइए, उसमें घुटनों में बहुत सारे फायदे होंगे। और रात को सोते वक्त आपने निश्चित रूप से नाभि पर जो कैस्टर ऑयल होता है ना, मेडिकेटेड नहीं होना चाहिए वो, कैस्टर ऑयल के 5-7 बूंदे रखें। और आपको बहुत अगर व्याधि है तो आप रात को सोते वक्त आधा चम्मच कैस्टर ऑयल ले ले, सबसे वो ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। और कड़ी पत्तों का मैंने जिक्र किया था पहले, कड़ी जो बनती है उसमें जो पत्ते डालते हैं, कड़वा नीम नहीं, कड़ी पत्ता, 30-30 ग्राम कड़ी पत्ता सुबह शाम आप खाने के आधे घंटे पहले उसका जूस पीजिए, 3 महीना पीजिए, सारी बातें आप भूल जाओगे। जी सर
जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरीश भाई। मैं समझता हूँ वक्त जो है हमें यहीं पर इजाजत लेने के लिए कह रहा है, हमारे बहुत सारे साथी फॉलो भी कर रहे हैंगे, वो कह भी रहे हैं कि हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि वो सब इन टिप्स को फॉलो करेंगे। कल फिर हम आपसे बातचीत करेंगे, कल एक नए विषय पर आपसे बोध भी लेंगे और आप हमारे प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, मगर आज आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथियों के प्रश्नों के उत्तर दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे खुशी हुई आपने इतना प्यार दिया। वंदे मातरम, ओम शांति।
दोस्तों ये थे हरीश वैद्य जी और जुड़े थे हमारे साथ सीधे बड़ौदा से, और कार्यक्रम में हमें बता रहे थे कि हमारे प्रश्नों के लिए उत्तर तो दे ही रहे थे मगर साथ साथ बोध भी दिला रहे थे कि हमें किस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या क्या चीजें हमें करने की आवश्यकता है जब हम खड़े होकर आसन करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज कार्यक्रम के आखिरी हिस्से पर चलते हैं जिसका नाम है राजयोग ध्यान यानी कि मेडिटेशन। हम सभी जानते हैं कि योग एक संपूर्ण योग है और पतंजलि के 8 सूत्रों में पतंजलि ध्यान को भी एक सूत्र के रूप में बताते हैं, और राजयोग में हम इसी ध्यान या मेडिटेशन को सीखते हैं। घबराइए नहीं अगर आप फर्स्ट डे भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर आपको मेडिटेशन नहीं भी आता तो भी एक गाइडेड मेडिटेशन है जहां पर आपको सिर्फ बैठकर हमारे साथ साथ इसे करना है और इसे करने की विधा बहुत ही आसान है। तो चलिए 5 मिनट के लिए हम सभी अब मेडिटेशन यानी ध्यान का अभ्यास करते हैं राजयोग मेडिटेशन।
अभी थोड़े समय के लिए अपनी जिंदगी के उन पलों को याद करें जब परमात्मा ने हमारी मदद की, उन अनुभव की गहराइयों में जाएं जब उसने हमारा साथ दिया। याद करें उस क्षण को जब मैंने जो चाहा था उसने वो पूरा कर दिया। ये अनुभव दिल को अत्यंत सुख की अनुभूति कराता है। भगवान जिसको हम सभी अलग अलग रूप से याद करते, अलग अलग नामों से पुकारते, उस अल्लाह खुदा ईश्वर को तहे दिल से उसकी स्वयं पर इस कृपा के लिए धन्यवाद करें। कहें थैंक यू गॉड फॉर बीइंग विद मी, उस सहयोग के लिए उसका शुक्राना करें कि जब जब मुझे जरूरत पड़ी आपने किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप से, कभी शिक्षाओं के रूप में तो कभी प्राप्ति के रूप में मेरा साथ दिया। अपनी प्रेजेंस की अनुभूति कराई। ये स्मृति, ये यादें, ऐसा अनुभव कराती है जैसे मैं कितनी खास हूं, भगवान कभी पिता बनकर मुझे प्यार करते, शक्ति, आत्मविश्वास का जैसे वर्षा देते, और कभी टीचर के रूप में गाइड करते, रास्ता दिखाते, अच्छे और बुरे का फर्क समझाते, ये उसकी पालना ही तो है जो समय समय पर साथ देते। इतना धन्यवाद न निकलना चाहिए दिल से कि वो सदैव अपनी नजर मुझ पर रखते। कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे ईश्वर जैसा पिता, ईश्वर ही पिता बनकर मिला। ऐसे पिता को, ऐसे टीचर को दिल से शुक्राना करें। ये अनुभूति मन को अत्यंत सुख की, संतुष्टता की फीलिंग देता है। ऐसा लगता है जैसे वहां मेरा भाग्य। भगवान मेरी कितनी केयर करते, सर्व प्रकार की अनुभूतियां सुख के साथ साथ ये इंस्पिरेशन भी देती है, जैसे जो प्यार, जो प्राप्ति मुझे आपसे मिला, मैं दूसरों के साथ भी शेयर करूं। ये अनकंडीशनल लव जो भगवान का मुझ पर है, ये निस्वार्थता मैं अपने जीवन में भी दूसरों के साथ व्यवहार में लेकर, यही मुझे मेरे मन को स्वच्छ करता और मुझे भगवान के नजदीक लेकर आता। ये नजदीकी मुझ में शक्तियों का संचार कर देती है और मेरे साथ साथ औरों के लिए भी सुख का कारण बन जाते। तो ईश्वर के साथ साथ अपने जीवन में हर इस व्यक्ति को धन्यवाद करें जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी रूप से सहयोग दिया, साथ ही साथ प्रकृति को भी धन्यवाद करें। शुक्राना मेरे हृदय को स्वच्छ करने के साथ साथ मेरे मन को हल्का कर देती है और इस हल्केपन की अनुभूति मुझे हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। तो दिल से सभी को शुक्रिया करें। थैंक यू, थैंक यू गॉड टू गिव मी सच अ वंडरफुल लाइफ। ये अनुभूति हर रोज 2 मिनट जरूर करें जिससे मेरा मन साफ हो जाए और मेरे अंदर सकारात्मकता प्रवाहित होने लगे। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर मेडिटेशन एक्सपीरियंस के लिए। दोस्तों बहुत बार हमारे लाइफ में जो चीजें होती हैं उन चीजों को अप्रिशिएट करना, उसके लिए धन्यवाद करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो धन्यवाद करने से हम किसी का ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, उनको कुछ दे नहीं रहे हैं, बट हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि हमारे पास कितने सारे तोहफे हैं। और इस धन्यवाद के भाव से हमारे अंदर एक अजीब प्रकार की सुकून की महसूसता होती है, क्योंकि हम धन्यवाद कह के ये देख रहे हैं कि मेरे पास क्या है और कितनी सारी चीजें मुझे तोहफे में मिली। और हम सबके पास लाइफ में बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स से, फैमिली से, हमारे टीचर्स से, प्रकृति से, लाइफ से, कितनी सारी चीजें हमें मिली हैं, परमात्मा की कितनी ब्लेसिंग्स हम सब पर हैं, भगवान हमें क्या क्या चीजें देकर नहीं नवाजता। उन सब चीजों को याद करने से लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता बनी रहती है, और वही आज के मेडिटेशन में हमने सीखा भी। तो धन्यवाद देना सीखें। और आज मेडिटेशन में हमने प्रकृति का, परमात्मा का, हमारे सभी साथियों का धन्यवाद किया है। तो आज अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो ऐसे ही किसी अनजान दोस्त को फोन कीजिए जिनसे आप बड़े दिनों से बात नहीं किया है, उन्हें फोन करके धन्यवाद दीजिए कि उनके होने से आपके लाइफ में क्या आपको बेनिफिट हुआ है, क्या संबल उन्होंने दिया है और उनके होने से कितना सुकून आप महसूस करते हैं। तो न जाने किस किस मोड़ पर कितने कितने लोगों ने हमारी मदद की है, उनको याद करके ही अगर उनका धन्यवाद कर दें तो भी चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ सकती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर हम एक नए दिन पर अपने 21 दिवसीय योगा चैलेंज को लेकर वापस आएंगे। कल फिर आप हमारे साथ कुछ नए योगासन सीखेंगे, कुछ सवाल जवाब होंगे। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो फिर आप हमें सजेशंस दीजिए, अपने फीडबैक्स लिखिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम अपने कार्यक्रम को और भी बेहतर बना सकें, हमारे दोस्तों तक, दूसरों तक भी पहुंचा सकें और दूसरे लोग इसके बेनिफिट्स ले सकें। अगर कोई आपका फ्रेंड है जो फिटनेस के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, अपने शरीर का ख्याल नहीं रख रहा, तो उन्हें ले आइए कार्यक्रम में, साथ में जोड़िए, ताकि वो एटलीस्ट 5-10 मिनट हमारे साथ एक्सरसाइजेस करें, योगासन करें और थोड़ा सा मेडिटेशन सीखें। तो यही हम सब लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। और आखिरकार योग इस सारे विश्व के लिए भारत की देन है, भारत का तोहफा है, जो हमने आज विश्व भर में देखा है। और योगा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, ऐसे हरीश वैद्य जी कह रहे थे, मगर ये लोगों को स्वस्थ बनाने की इंडस्ट्री है और इसमें लोग स्वस्थ हो जाए, और भारत की ही ये देन है, जहां पर विदेशों में लोग इसे इतने चाव से कर रहे हैं। तो हम सबको सीख कर करना आवश्यक है और संपूर्ण रीति से योग को सीखकर उसके सिर्फ फिजिकल नहीं बट उसके मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हमें रीप करने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, शाम को 6 बजे। आप खुद आए, दोस्तों को ले आए, परिवारजन के साथ मिलकर करते हैं संपूर्ण योग। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार। ओम शांति।